بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب ڈائمنڈ مشن ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے. اس کتاب کے مصنف ظہیر احمد ہے. یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات اور ریکارڈنگ کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پر 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. محترم قارئین السلام علیکم. ڈائمنڈ مشن کا دوسرا حصہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ میرے طویل ترین ناول کا دوسرا حصہ ہے. ناول کی کردار نگاری، ایکشن اور سسپینس جس عروج پہ جا رہا ہے، اسے پڑھنے کے لیے آپ یقیناً بے چین ہو رہے ہوں گے. البتہ ناول پڑھنے سے پہلے ایک خط اور اس کے جواب کا مطالعہ کر لیں، کیونکہ یہ بھی دلچسپی میں کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے. مندرا شہر سے چودھری لیاقت صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے نئے پرانے تمام ناول سوائے کرسٹل بلٹ کے دو تین مرتبہ پڑھے ہیں. میں نے جتنی بار بھی ناول پڑھے ہیں مجھے بے حد لطف محسوس ہوا ہے. ہر ناول پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی فلمی منظر کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ نے جس طرح ہر ماہ 2 بہترین ناول ہمارے لیے لکھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس سے آپ نے ہم سب قارئین کے دل جیت لیے ہیں. اور یہ آپ جیسے ذہین رائٹر ہی کا کام ہے جو ہر ماہ 2 مختلف طرز کے ناول لکھتے ہیں. سابقہ 2 ناول بلیک اسپارک اور بگ برادرز بھی اپنی مثال آپ ہوئے ہیں، جو آپ کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے. بگ برادرز ناول میں ڈاکٹر ایکس ایک بار پھر سامنے آیا ہے. امید ہے ڈاکٹر ایکس دوبارہ جلد ظاہر ہوگا اور عمران اسے گردن سے پکڑ کر خلا سے زمین پر کھینچ لائے گا. میرا چھوٹا بھائی جس کا نام چودھری اسد ہے، وہ آپ کے بچوں کے لیے لکھے گئے ناولوں کا دیوانہ ہے اور اس نے آپ کے تمام ناول کئی بار پڑھ رکھے ہیں، اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ نے بچوں کے ناول لکھنے کیوں چھوڑ دیے ہیں. امید ہے آپ عمران سیریز کے ساتھ ساتھ بچوں کے ناول جو خاص نمبر ہوں گے ضرور لکھیں گے. میرا بھائی آپ کو بہت دعائیں دیتا ہے اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں. محترم چودھری لیاقت صاحب، آپ کے لکھے خط اور ناولوں کی پسندیدگی کا شکریہ. آپ کی دعائیں میرے لیے بے حد اہمیت کی حامل ہیں. یہ آپ جیسے دوستوں کی دعائیں ہی ہیں کہ میں اس مقام پر پہنچ سکا ہوں. چھوٹے چودھری اسد صاحب کے لیے 2 خاص نمبر کالا شہزادہ تلسم ہوشربہ میں اور کالا شہزادہ قید میں شائع ہو گئے ہیں. مزید خاص نمبر بھی انہیں جلد پڑھنے کو ملتے رہیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خط بھی لکھتے رہیں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا نگہبان ہو. آپ کا مخلص ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. عمران اور ٹائیگر کراؤس کے کام سے البانیو نامی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے. لارڈ ڈیمرے کے پیلس سے نکلتے ہی عمران نے راستے میں جیپ چھوڑ دی تھی اور پھر وہ ٹائیگر کے ساتھ مختلف ٹیکسیاں بدلتا ہوا اس ہوٹل تک پہنچا تھا. یہ کمرہ 3rd فلور پر تھا جس کا نمبر 3 تھا. عمران کے چہرے پر سنجیدگی اور تشویش کے تاثرات نمایاں دکھائی دے رہے تھے. اسے اس بات کا غصہ تھا کہ لارڈ فراسٹن اسے یہ بتانے ہی والا تھا کہ بلیک ڈائمنڈ اس کے کس ساتھی نے اور کیسے چوری کیا ہے کہ روشن دان سے ایک آدمی نے گولی مار کر عمران کی ساری بھاگ دوڑ بیکار کر دی تھی. وہ بلیک ڈائمنڈ کے بارے میں کوئی کلو حاصل نہ کر سکا تھا. اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جس بلیک ڈائمنڈ کو تلاش کرنا آسان سمجھ رہا تھا وہ بے حد مشکل اور اس کی پہنچ سے دور ہوتا جائے گا. عمران سوچ رہا تھا کہ اگر بلیک ڈائمنڈ واقعی لارڈ فراسٹن کے کسی ساتھی نے چوری کیا ہے تو پھر وہ کراؤس میں نہ ہوگا بلکہ بلیک ڈائمنڈ لے کر نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا ہوگا. عمران کے ساتھ ٹائیگر بھی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں چونک پڑے. میں دیکھتا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. ٹائیگر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے قریب آ کر رک گیا. کون ہے؟ ٹائیگر نے اونچی آواز میں کہا. روم سروس. باہر سے آواز سنائی دی تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دروازے کا لاک کھول کر ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول دیا. اس نے ہی عمران سے پوچھ کر روم سروس کو کال کر کے اپنے لیے اور عمران کے لیے کافی منگوائی تھی. باہر واقعی ویٹر ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑا تھا جس میں کافی کا سامان موجود تھا. ٹائیگر نے اسے راستہ دیا تو وہ اندر آ گیا اور اس نے بڑھ کر عمران کے سامنے ٹرے رکھ دی. تم جاؤ، میں کافی خود بنا لوں گا. टाइगर ने कहा तो वेटर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर वो सर हिलाकर मुड़ा लेकिन फिर रुक गया और मुड़कर इमरान की तरफ देखने लगा। आपसे एक बात करनी है जनाब, वेटर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान ने चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। मुझसे? इमरान ने चौंक कर कहा। जी हाँ, वेटर ने संजीदगी से कहा। कहो, इमरान ने कहा, मेरा नाम वाल्टर है और मुझे टीएम ने भेजा है। वेटर ने कहा, टीएम में? समझा नहीं, इमरान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। वेटर का चेहरा इसके लिए नाआशना था। ट्रू मैन, वेटर ने कहा और इसके मुंह से ट्रू मैन का नाम सुनकर इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ट्रू मैन क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर जो दरवाजे के पास खड़ा था वो भी ट्रू मैन का नाम सुनकर चौंक पड़ा। मैं ट्रू मैन का साथी हूँ, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने अपना नाम वाल्टर बताया था। कौन ट्रू मैन और तुम इसके बारे में मुझे क्यों बता रहे हो? इमरान ने वाकई हैरत भरे लहजे में कहा, इसलिए कि आप इमरान साहिब हैं, वेटर ने कहा। तो इमरान एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और आंखें फाड़ फाड़ के वेटर को देखने लगा, जैसे इसके सामने वेटर के बजाय कोई माफूफुल फितरत मखलूक मौजूद हो। इसने गौर से वेटर की तरफ देखा और फिर एक तवील सांस लेकर रह गया। टाइगर, दरवाजा बंद कर दो, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। तो टाइगर ने दरवाजा बंद करके इसे लॉक लगा दिया। बैठो, इमरान ने वाल्टर से मुखातिब होकर कहा। तो वाल्टर मुस्कुराता हुआ इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। आप मुझसे यकीनन पूछेंगे कि मैंने आपको कैसे पहचाना है, वाल्टर ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। अब ट्रू मैन इतना अहमक आदमी भी नहीं है कि ब्लैक थंडर के काम करते हुए मेरे खिलाफ एक्शन में रहा और फिर मुतअद्दिद बार मेरे साथ काम करते रहने के बाद सादा से मेकअप में होने की वजह से मुझे पहचान न सके और मुझे पहचाने या न पहचाने, लेकिन ट्रू मैन की चील जैसी नजरों से मैं कैसे छुप सकता हूँ, इमरान ने कहा। मैं ट्रू मैन नहीं, इसका साथी वाल्टर हूँ जनाब, वाल्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें मेरे सर पे सींग दिखाई दे रहे हैं? इमरान ने जवाबन मुस्कुराकर कहा। नहीं, क्यों? वाल्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर मेरे सर पर सींग नहीं है और इसके बावजूद तुमने मुझे पहचान लिया है तो तुम्हारे सर पर भी सींग नहीं है, फिर ये कैसे मुमकिन है मैं तुम्हें ना पहचान सकूं? गो कि तुमने शानदार और इंतहाई जदीद प्लास्टिक मेकअप कर रखा है, लेकिन तुम्हारी आंखों की बनावट और तुम्हारे देखने का अंदाज और फिर खास तौर पर तुम्हारी आवाज ये किसी वाल्टर शाल्टर या काल्टर की नहीं हो सकती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वाल्टर, जो वाकई ट्रू मैन ही था, एक तवील सांस लेकर रह गया। हैरत है, मैंने तो भरपूर अंदाज में मेकअप किया था और ये मेकअप मेरी ही ईजाद करदा है। मुझे यकीन था कि इस मेकअप में आप मुझे ना पहचान सकेंगे, लेकिन इस बार ट्रू मैन ने असल आवाज में कहा, तुम शायद भूल रहे हो, अगर तुम्हारी नजरें चील जैसी हैं तो मेरी नजरें भी बिल्ली से कम नहीं है, जो अंधेरे में भी बासानी देख सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ट्रू मैन बेख्तियार हंस पड़ा। चले, कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं पहचानेंगे तो और कौन पहचानेगा, ट्रू मैन ने हंसते हुए कहा। काश के तुम कोई हसीना होती, तुम और मैं बरसों से बिछड़े हुए होते और फिर इस तरह अचानक सामने आकर एक दूसरे को पहचान लेते। मैं बाहें फैलाता और तुम फौरन मेरे गले लग जाते, मेरा मतलब है लग जाती, और फिर हम आहों और सिसकियों के साथ एक दूसरे के कांधे पर आंसू बहाते और पुरानी यादें ताजा करके एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते, और फिर इमरान की जबान चल पड़ी, फिर भला रुकने का नाम कैसे ले सकती थी। इसकी बातें सुनकर ट्रू मैन बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा ही है कि मैं हसीना नहीं हूँ, वरना आप मुझे अगवा करके ले जाते तो मैं आप जैसे खतरनाक इंसान से अपनी जान कैसे बचाती, ट्रू मैन ने हंसते हुए कहा। तो इसके खूबसूरत जवाब पर इमरान भी हंस पड़ा। टाइगर आगे बढ़कर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या ये वाकई ट्रू मैन है? इमरान ने टाइगर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, सच्चा आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, इमरान ने कहा। तो ट्रू मैन एक बार फिर हंस पड़ा और इसने उठकर टाइगर से भरपूर अंदाज में मुसाफा किया। मैं भी इंसानों ही में शुमार होता हूँ, मुझसे तो मुसाफा किया नहीं, और टाइगर से फौरन पंजा मिला लिया, इमरान ने शिकायती लहजे में कहा। तो ट्रू मैन एक बार फिर हंस पड़ा, वो हाथ फैलाकर इमरान के सामने खड़ा हुआ तो इमरान उठकर इसके गले लग गया। काश कि तुम वाकई कोई हसीना होती, इमरान ने ठंडी सांस भरकर कहा। तो ट्रू मैन हंसता हुआ इससे अलग हो गया। अब मैं क्या कहूँ आपसे, ट्रू मैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जो मर्जी कह लो भाई, तुम कौन सी सचमुच की हसीना हो जो कुछ कहने से शर्मा रही हो, इमरान ने एक सर दाह भरकर कहा। तो ट्रू मैन बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो क्या आप वाकई यहाँ किसी हसीना की तलाश के लिए आए हुए हैं, ट्रू मैन ने पूछा। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की हसीनाओं ने तो शायद कसम खा ली कि वो मुझ जैसे अहमद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगी, और मैं जिस तरफ देख लूँ तो वो मुझे आंखें दिखाना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो एक्रेमिया चलते हैं और ऐसी किसी हसीना को तलाश करते हैं, या तो भेंगी हो या इसकी आंखों में मोतिया उतरा हुआ हो ताकि वो मुझे देख सके लेकिन मेरे अहमकपन को न देख सके, और मेरी नाव भी किसी किनारे लग जाए जो बगैर चप्पुओं के बीच दरिया में डोल रही है और किसी किनारे पर लगने का नाम ही नहीं लेती, इमरान ने कहा। तो ट्रूमैन ने एक बार फिर हंसना शुरू कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानता आप यहाँ किसी लड़की के चक्कर में आए हैं, मुझे मालूम है आप यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, ट्रूमैन ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है सच्चा आदमी जब हमें तलाश करके हम तक पहुँच सकता है तो फिर इसके लिए ये मालूम करना क्या मुश्किल हो सकता है हम यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, इमरान ने कहा। मुझे आप दोनों की आमद का बहुत पहले हो गया था, आपने यहाँ आकर मुझसे रब्ता न किया था इसलिए मैं यही समझा आप किसी जाती काम के लिए आए होंगे, क्योंकि आपको यहाँ खतरा लाहक हो सकता है और मेरे इल्म में आया था कि आपको और टाइगर को हलाक करने के लिए डेगर का आदमी रॉबिन हरकत में आया, तो मैंने इस पर और आप पर नजर रखनी शुरू कर दी। मुझे यकीन था कि रॉबिन जैसा आदमी आपको हलाक करना तो क्या आपको छू भी नहीं सकेगा, और ऐसा ही हुआ। इसके बाद जब आप टाइगर के साथ लॉर्ड डेमरे के पैलेस में गए तो मैं चौंक पड़ा, तब मुझे यकीन हो गया आप यकीनन किसी अहम मिशन पर यहाँ पहुंचे हैं। मैंने साइंसी इलाज से आपकी निगरानी शुरू की और फिर मुझ पर सारी हकीकत वाजह हो गई कि आप लॉर्ड डेमरे से, जो असल में लॉर्ड क्रॉस्टन था, ब्लैक डायमंड हासिल करने आए हैं। इससे पहले कि लॉर्ड क्रॉस्टन आपको ब्लैक डायमंड चोरी होने के बारे में बताता, इसके एक आदमी ने लॉर्ड क्रॉस्टन को गोली मारकर हलाक कर दिया और आप वहां से निकलकर यहां पहुंच गए, टू मैन ने कहा। ये सब तो तुम ऐसे बता रहे हो जैसे तुम हमारे साथ साथ थे, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो ट्रूमैन की बातें सुनकर टाइगर के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। मैंने कहा ना, मैं जदीद साइंसी आलात और एक सैटेलाइट सिस्टम से आपकी निगरानी कर रहा था, मैं आपको न सिर्फ इस सिस्टम के तहत लाइव देख सकता था बल्कि आपकी बातें भी सुन सकता था, ट्रूमैन ने कहा। क्या बात है, लगता है तुमने साइंसी मैदान में खासी तरक्की कर ली है, जो एक आदमी को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो और इसकी बातें भी सुन सकते हो, इमरान ने कहा। जी हाँ, ये मेरे एक दोस्त साइंसदान का कमाल है, इसने एक ऐसी मशीन ईजाद की है जिसका लिंक एक्रेमिया के किसी भी सैटेलाइट से किया जा सकता है, और फिर इस मशीन के कंप्यूटर में अगर किसी इंसान का डेटा फीड कर दिया जाए, मेरा मतलब है इस आदमी का कद काठ, इसका रंग, इसके चलने फिरने और बोलने का अंदाज, तो मशीनी कंप्यूटर तेजी से इस आदमी को ट्रेस कर लेता है चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, और फिर सैटेलाइट और इस मशीन के जरिए न सिर्फ इस आदमी को लाइव मॉनिटर किया जा सकता है बल्कि इसकी आवाज भी सुनी जा सकती है, ट्रूमैन ने कहा। तो तुमने मेरा सारा डेटा इस कंप्यूटराइज मशीन में फीड कर रखा है, इमरान ने कहा। जी हाँ, ट्रूमैन ने मुस्कुरा कर कहा। फिर तुम ये ना कहो कि तुम मेरी निगरानी कर रहे थे, साफ लफ्जों में बोलो तुम फोड़ और शक्की मिजाज बीवियों की तरह मेरी जासूसी कर रहे थे, इमरान ने कहा। तो ट्रूमैन बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा कदरदान हूँ इमरान साहिब, मुझे इस बात पर का पता चले कि आप एक्रेमिया में हैं और आपकी हिफाजत का इंतजाम न करूं ये कैसे मुमकिन है, ट्रूमैन ने कहा। तो तुम मुझे मेरी हिफाजत के लिए मॉनिटर कर रहे थे, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं ये सब खामोशी से करना चाहता था, मैं इस वक्त तक खामोशी से इंतजार करता जब तक आप किसी सख्त मुश्किल में न पड़ जाते, ऐसी सूरत में मुझे आपके लिए हरकत में आना पड़ता और मैं आपको मुश्किल से निकालने या फिर आपको यकीनी मौत से बचाने के लिए हर वक्त तैयार था, ट्रूमैन ने कहा। लेकिन इस वक्त तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना मैं किसी मुश्किल में हूँ और ना ही मुझे मौत का खतरा है, फिर इस तरह तुम्हारा अचानक सामने आना मेरे लिए हैरत का बायस नहीं होगा तो और क्या होगा, इमरान ने कहा। अगर मैं कहूँ आप दोनों इस वक्त इसी सूरत हाल का शिकार है, तो ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इसके लिए तुम्हें मुझे मुदलिल प्रूफ देना होगा, इमरान ने जवाब दिया। तो इसके मुदलिल प्रूफ कहने पर ट्रूमैन ने एक बार फिर हंस पड़ा। सबसे पहला प्रूफ तो ये कि आप जिस ब्लैक डायमंड को तलाश कर रहे हैं वो एक्रेमिया में तो क्या दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद नहीं है, बल्कि वो आपकी पहुंच से इतना दूर जा चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते, ट्रूमैन ने कहा। तुम्हारा मतलब है ब्लैक डायमंड वफात पा चुका है, इमरान ने कहा। तो ट्रूमैन चौंक पड़ा। वफात में समझा नहीं, ट्रूमैन ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो जानदार इस दुनिया से कूच कर जाता है इसे वफात पाना ही कहते हैं, और वफात पाने वाला जानदार इतना दूर चला जाता है कि इसकी वापसी मुमकिन नहीं होती। तुम कह रहे हो ब्लैक डायमंड मुझसे इतनी दूर जा चुका है जिसका मैं सोच भी नहीं सकता, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बेचारा ब्लैक डायमंड वफात पा चुका है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो ट्रूमैन हंस पड़ा। ब्लैक डायमंड जानदार नहीं है जो वफात पा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूंगा ब्लैक डायमंड ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां से इसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल काम है, या आप एक मिसल देते हैं ना जुए शेर लाना, तो मैं यही कहूंगा ब्लैक डायमंड जहां है वहां से वापस लाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। क्रूमैन ने कहा, क्यों, ऐसी कौन सी जगह है जहां से ब्लैक डायमंड वापस नहीं लाया जा सकता? इमरान ने हैरान होते हुए कहा, सी वर्ल्ड। क्रूमैन ने कहा, तो इमरान के साथ साथ टाइगर भी चौंक पड़ा, सी वर्ल्ड क्या मतलब, ये सी वर्ल्ड क्या है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे ये नाम वो पहली बार सुन रहा हो। बैन अल-अक़वामी मुजरिम तंजीम किंग्स की बनाई हुई एक ऐसी दुनिया जो कुरा अर्थ के किसी समंदर में मौजूद है, लेकिन ये समंदरी दुनिया कहाँ और किस समंदर में है इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्रूमैन ने संजीदगी से कहा। अगर इस समंदरी दुनिया के बारे में कोई नहीं जानता तो तुम ये सब कैसे जानते हो? इमरान ने कहा, सी वर्ल्ड के बारे में मेरे पास कुछ शवाहिद मौजूद है जिनसे ये कन्फर्म हुआ है कि वाकई दुनिया समंदर में एक ऐसी मशीनी दुनिया मौजूद है जो सी वर्ल्ड कहलाती हो और इस पर मुजरिमों की बैन अल-अक़वामी तंजीम किंग्स का होल्ड है। इस समंदरी दुनिया के 4 किंग्स हैं जो सी वर्ल्ड के कर्ता धरता हैं और उन्होंने सी वर्ल्ड को साइंसी टेक्नोलॉजी से इंतहाई ताकतवर, फाल और इंतहाई खतरनाक हद तक पावरफुल कर रखा है। 4 किंग्स कौन है इनके बारे में कोई नहीं जानता, अलबत्ता इतना जरूर पता चला है कि 4 किंग्स ने 4 अलग अलग कैटेगरियां बना रखी हैं जिनमें एक किंग जमीनी दुनिया को कंट्रोल करता है, दूसरे किंग का कंट्रोल स्काई पर है जिसमें खलाई निजाम भी आता है, तीसरे किंग का दायरा इख्तियार दुनिया के तमाम डिजर्ट है और चौथा किंग जो इन तीनों किंग्स का बिग किंग है, सी किंग है जिसका समंदरी दुनिया पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो अपनी समंदरी दुनिया में रहकर समंदरी निजाम और समंदर में दौड़ने वाले दुनिया के बनाए हुए तमाम सिस्टम को कंट्रोल करता है और जाहिर है समंदर में दौड़ने वाले दुनिया के सिस्टम में शिप्स, लांचे, मोटर बोट्स, आबदोजें और बेड़े शामिल हैं, क्रूमैन ने तफसील बताते हुए कहा। तो क्या 4 किंग्स अपनी ताकत से दुनिया पर कंट्रोल करना चाहती है? इमरान ने कहा, इसके लहजे में बदस्तूर हैरत थी। जी हाँ, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक सी वर्ल्ड बनाने का यही मकसद है और 4 किंग्स पूरी दुनिया के तमाम निजाम को, चाहे वो मशीनी निजाम हो या कंप्यूटराइज्ड निजाम, साइंसी टेक्नोलॉजी हो या इसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी शोबे से हो, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया इनके इशारों पर नाचे और इन्हें मास्टर पावर का दर्जा मिल जाए, यहाँ तक कि सुपर पावर्स भी इनकी मास्टर पावर के सामने सरनिगुं हो जाए, क्रूमैन ने कहा। तो क्या 4 किंग सी वर्ल्ड में रहते हैं और वहीं से इनका तमाम सेटअप कंट्रोल करते हैं जिनके बारे में तुमने तफसील बताई है? इमरान ने कहा, इसके बारे में मेरे पास मालूमात नहीं है कि 4 किंग्स कहाँ रहते हैं, हो सकता है कि वो सब कुछ अपनी समंदर दुनिया से ही कंट्रोल करते हो या फिर मुमकिन है उन्होंने अलग अलग कैटेगरियां बना रखी है, इनके तहत उन्होंने अपनी अलग अलग दुनिया भी बना रखी हो। जमीनी निजाम कंट्रोल करने वाला किंग जो अर्थ किंग कहलाता है वो दुनिया के किसी हिस्से में मौजूद हो, डिजर्ट किंग किसी डिजर्ट में हो और स्काई किंग आसमान की दुनिया में कहीं छुपा हो। बहरहाल ये तय है, सी वर्ल्ड का बिग किंग जो सी किंग है वो इसी मशीनी और कंप्यूटराइज दुनिया में रहता है, क्रूमैन ने कहा। और क्या मालूमात है तुम्हारे पास सी वर्ल्ड के बारे में? इमरान ने इसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। बहुत सी मालूमात हैं लेकिन ये सारी मालूमात महज किंग सेक्रेटरी से मुतालिक हैं। इन मालूमात से ये पता नहीं चलता कि सी वर्ल्ड कहाँ है और सी वर्ल्ड के किंग कौन है या इन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्रूमैन ने कहा। चलो जो मालूम है वही बता दो, ब्लैक डायमंड हासिल करने के लिए अगर हमें इन किंग्स तक पहुंचना पड़ेगा तो इन तक पहुंचने के लिए रास्ता हम खुद बना लेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुजरिम तंजीम किंग्स सरबराहन का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है, इनमें एक किंग का ताल्लुक एक्रेमिया से है, दूसरा फ्रांस से ताल्लुक रखता है, तीसरा कार्मन से और चौथा किंग रूसिया का है। इन चारों किंग्स के बारे में जो मालूमात मैंने हासिल की थी इनसे ये पता चलता है ये चारों एक्रेमिया में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक्रेमिया के शहर ओस्लो में किंग सेक्रेटरी की बुनियाद रखी थी। ये सेक्रेटरी चौक के लार्ड का सेक्रेटरी था इसलिए इनके जराइम शुरुआत से ही बड़े इंतहाई होलनाक थे। उन्होंने सबसे पहले एक्रेमिया को टारगेट बनाते हुए एक्रेमिया की 4 बड़ी रियासतों में अपने नाम का डंका बचाया था और चारों ने अलग अलग मगर इंतहाई बड़े पैमाने पर तबाहकारियों और कत्लोगारत का सिलसिला शुरू कर दिया था। कत्लोगारत के साथ साथ लूट मार, गैर कानूनी असला और मंशियात की स्मगलिंग समेत ये इंसानी स्मगलिंग में भी सबसे आगे थे। बहुत कम वक्त में पूरे एक्रेमिया में किंग सेक्रेटरी का नाम दहशत की अलामत बन गया। यह सेक्रेटरी दहशत और खौफ की अलामत बनकर एक्रेमिया में इस तेजी से उभरा के इसके सामने बड़े बड़े सेक्रेटरी मुजरिम तंजीमें और गुंडों और बदमाशों के कद छोटे पड़ गए। किंग सेक्रेटरी के नाम से न सिर्फ मुजरिम तंजीमें बल्कि अक्रीमियन सरकारी एजेंसियों की भी रातों की नींदें और दिन का चैन गारत हो गया था। किंग सेक्रेटरी खास तौर पर अक्रीमन एजेंसियों और एजेंटों के खिलाफ काम करती थी और जो एजेंसी या एजेंट इनके खिलाफ काम करने का सोचता भी था, किंग सेक्रेटरी के अरकान इसे पूरी कुव्वत और ताकत से कुचल कर रख देते थे। बहरहाल जितने कम वक्त में किंग सेक्रेटरी ने अक्रीमिया में अपनी धाक बिठाई, इससे भी कम वक्त में इसका सेटअप यूरोप, फ्रांस और कई अफ्रीकी ममालिक तक फैल गया और फिर इसका नेटवर्क पूरी दुनिया तक पहुंच गया। एशियाई ममालिक को छोड़कर दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां किंग सेक्रेटरी का नेटवर्क मौजूद ना हो। जिस तेजी से किंग सेक्रेटरी ने दुनिया में अपनी ताकत का सिक्का जमाया था, इसी तेजी से अचानक किंग सेक्रेटरी का नेटवर्क सुकड़ना शुरू हो गया। अक्रीमन और गैर मुल्की एजेंसियों को ऐसी मालूमात मिलना शुरू हो गई कि किंग सेक्रेटरी ने न सिर्फ दुनिया से अपना नेटवर्क खत्म करना शुरू कर दिया है बल्कि इसके बड़े बड़े और ताकतवर ग्रुप्स भी गायब होते जा रहे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि किंग सेक्रेटरी का नाम पूरी दुनिया से खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किंग सेक्रेटरी का पूरी दुनिया से वजूद ही खत्म हो गया हो। दुनिया के किसी भी हिस्से में किंग सेक्रेटरी का एक भी सेटअप मौजूद न था। सब कुछ अचानक और तेजी से खत्म कर दिया गया था। कई साल गुजर गए लेकिन किंग सेक्रेटरी की तरह से एक मामूली सी भी एक्टिविटी सामने न आई तो अक्रीमिया और इन ममालिक ने सुख का सांस लिया कि किंग सेक्रेटरी जिस तेजी से उभरी थी इसी तेजी से नामुसाइद हालात ने इन्हें जवाल पजीर कर दिया है और अब दुनिया में कहीं भी किंग सेक्रेटरी का नाम मौजूद नहीं है। इस सारे वाक्य में सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि जैसे जैसे किंग सेक्रेटरी का नाम गायब होता जा रहा था वैसे ही दुनिया के बड़े बड़े नामवर और इंतहाई बेहतरीन दिमाग भी गायब होते जा रहे थे, जिनमें नामवर साइंसदान, इंजीनियर, टेक्नीशियन, माहिर मादनियात, माहिर अर्जियात, माहिर मौसमियात, माहिर फलकियात और माहिर निबातात से लेकर माहिर बहरोबर और न जाने कौन कौन से माहिरीन शामिल थे और इनमें ऐसी बेशुमार शख्सियात थी जो अपने शोबे में इंतहाई नामवर थी। इन्हें तलाश करने के लिए पूरी दुनिया की एजेंसियां और एजेंट मुतहरिक थे लेकिन आज तक इनमें से किसी एक का भी सुराग न मिल सका था। रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला भी रुक गया। इस दौरान किंग सेक्रेटरी का नाम ही दुनिया से नापीद हो गया। चंद माह कबल में एक मुजरिम की तलाश में जजीरा हवाई की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मेरी लांच खराब हो गई। लांच पर मैं अकेला था। समंदर के जिस हिस्से में लांच का इंजन बंद हुआ वहां पानी का बहाव तेज था जो लांच को धकेलता हुआ जजीरा हवाई से दूर ले गया। मैं कई रोज इस लांच में समंदर में फंसा रहा। वहां दूर नजदीक मेरी मदद करने वाला कोई न था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने लांच रेंट पर ली थी और इसमें खाने पीने का सामान वाफर मकदार में मौजूद था, इसलिए मेरी लाइफ सेफ रही। मुझे खाने और पीने का कोई मसला ना हुआ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि किसी तरह लांच का इंजन ठीक कर सकूं लेकिन मैं इसमें कामयाब ना हो सका। खैर तीन दिन और चार रातें मेरी लांच समुद्री बहाव पर बहती रही और फिर चौथे दिन जब मैं जागा तो मेरी लांच रुकी हुई थी। मैं केबिन से निकलकर बाहर आया तो ये देखकर भी हैरान हुआ और परेशान भी कि मेरी लांच एक जजीरे के साहिल पर रुकी हुई है। साहिल ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन जंगली हयात से भरा हुआ था। सारे जजीरे पर जंगल ही जंगल फैला हुआ था। इस जजीरे की जमीन का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ सब्जा मौजूद ना हो। मेरे लिए ये खुशी की बात थी कि मैं समंदर से निकल के जमीन के हिस्से तक पहुंच गया था, चाहे वो जजीरा ही सही हो। लांच से बाहर आया तो मुझे लांच के पास एक टूटी फूटी कश्ती दिखाई दी। कश्ती की हालत इंतहाई नागुफ्ता थी। ऐसा लग रहा था जैसे कश्ती भी मेरी लांच की तरह समुद्री लहरों पर बहती हुई इस तरफ आ गई हो। कश्ती खाली नहीं थी। इस कश्ती में एक बूढ़ा आदमी इंतहाई अबतर हालत में पड़ा हुआ था। इस आदमी की हालत ऐसी थी जैसे वो कई रोज से भूखा प्यासा हो और मुसलसल समंदर में बहता रहा हो। मैं लांच से उतर कर इसकी कश्ती पर गया और जब मैंने आदमी को चेक किया तो मुझे इत्मीनान हो गया। इस आदमी की हालत खराब थी लेकिन वो जिंदा था। इसकी नब्ज बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी और दिल की धड़कन भी ना होने के बराबर थी। इसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। मैंने सर उठाकर लांच में लाया और फिर मैंने इसका लांच में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स से इलाज करना शुरू कर दिया। इसकी तबीयत समंदर में ज्यादा रहने और भूख प्यास की वजह से खराब हुई थी। मेरे इलाज करने से इसकी हालत संभलने लगी और आखिर दो रोज बाद इसे होश आ गया। जब इसे होश आया तो वो खुद को जिंदा पाकर बेहद खुश हुआ, ट्रूमैन ने कहा, और ये सब कहकर खामोश हो गया। बस खत्म हो गई कहानी, इमरान ने कहा। नहीं, अभी बाकी है, ट्रूमैन ने कहा। तो इमरान एक तेज सांस लेकर रह गया। कौन था वो आदमी और समंदर में इस कश्ती पर, इस जजीरे पर कैसे पहुंचा था? इमरान ने पूछा। आप इस आदमी के बारे में जब सुनेंगे वो कौन था तो हैरान रह जाएंगे, ट्रूमैन ने कहा। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं पहले ही हैरान हो रहा हूँ, इस आदमी का सुनकर अगर हैरानी और बढ़ जाएगी तो इसमें हैरत की क्या बात है, इमरान ने कहा। तो ट्रूमैन हंस पड़ा। इस आदमी का नाम डॉक्टर स्टीफन बेलिस था, ट्रूमैन ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा, जैसे वो ये नाम बताकर इमरान के चेहरे के तासुरात देखना चाहता हो। डॉक्टर स्टीफन बेलिस, ओ ये तो शायद एक्रीमन साइंसदान है जिसने आज से 12 साल कवर एक्रेमिया में पहली बार बैलिस्ट मिसाइल मुतारफ कराए थे, और ये दुनिया के तेज तरीन और इंतहाई ताकतवर मिसाइल थे जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकते थे। इमरान ने चौंकते हुए कहा, जी हाँ ये वही साइंसदान है, ट्रूमैन ने मुस्कुरा कर कहा। ओ लेकिन ये साइंसदान तो 10 साल कबल एक्रीमिया से गायब हो गया था, जिसकी तलाश के लिए एक्रीमन एजेंसियों ने पूरी दुनिया का सर्च किया था, और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां एक्रीमन एजेंसी साइंसदान की तलाश के लिए ना पहुंची हो, इमरान ने कहा। जी हाँ डॉक्टर बेलिस दुनिया में होते तो एक्रीमन एजेंसी इन्हें तलाश करती, ट्रूमैन ने कहा। क्या मतलब? अगर डॉक्टर बेलिस दुनिया में नहीं थे तो कहाँ थे, और वो इस तरह एक आम सी कश्ती में इस जजीरे तक कैसे पहुंच गए, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही तो इस सारी कहानी का असल किरदार है जिसके जरिए मुझे किंग सेकेडेट के सीवर्ड का इल्म हुआ है, ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओ तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि डॉक्टर बेलिस को किंग सेकेडेट ने अगवा किया था और वो इतना अरसा सीवर्ड में थे, इमरान ने कहा। इसके लहजे में बदस्तूर हैरत का आंसर था। जी हाँ डॉक्टर बेलिस इन साइंसदानों में से एक थे जिन्हें किंग सेकेडेट ने सीवर्ल्ड बनाने के लिए अगवा किया था। इन जैसे बेशुमार साइंसदान और एक्सपर्ट किंग सेक्रेटरी के गुलाम बने हुए थे जो फोर किंग्स के लिए समंदर की गहराइयों में से एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जिसके बारे में अर्जी दुनिया का कोई फर्द कुछ न जानता था। डॉक्टर बेलिस ने सीवर्ल्ड बनाने में किंग सेक्रेटरी के साथ मजबूरी के आलम में काम किया था। जो भी फोर किंग के साथ काम करने से इनकार करता था, फोर किंग इसे इंतहाई अजियतनाक तशद्दुद का निशाना बनाते थे, और फिर भी अगर कोई इनके लिए काम करने से इनकार कर देता तो फोर किंग इसे भयानक मौत से हनकनार कर देते थे। डॉक्टर बेलिस ने भी शदीद और अजियतनाक तशद्दुद के बाद इनके लिए काम करने की हामी भरी थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल फोर किंग के लिए वक्फ कर दिए थे। सीवर्ल्ड बनाने में डॉक्टर बेलिस का बहुत बड़ा हाथ था, और फोर किंग्स को सीवर्ल्ड बनाने में जो कामयाबी मिली थी इसमें डॉक्टर बेलिस जैसे बेशुमार जहीन अफराद का हाथ है जो 10 साल और इसके बाद के अरसे में पूरी इसरार तौर पर गायब हुए थे और इनका आज तक कोई निशान ना मिल सका था, ट्रूमैन ने जवाब दिया। हैरत है, इसका मतलब है फोर किंग्स ने अपनी नई समंदरी दुनिया आबाद करने के लिए अपना सेक्रेटरी समेटा था, और दुनिया जे अपना सेक्रेटरी खत्म करने के साथ साथ वो दुनिया के बेहतरीन साइंसदान और बेहतरीन दिमाग के मालिक अफराद को अगवा कर रहे थे ताकि इनकी मदद से वो अपने लिए समंदरी दुनिया आबाद कर सकें, इमरान ने कहा। जी हाँ, चूंकि डॉक्टर बेलिस ने फोर किंग्स के फेवरेट थे और सीवर्ल्ड की तैयारी में डॉक्टर बेलिस का अमल दखल ज्यादा था और इनका फोर किंग का बरसों का साथ था, इसलिए फोर किंग इन पर ज्यादा एतमाद करते थे और सीवर्ल्ड को मजीद वसत देने और ताकतवर बनाने के लिए इन्हीं के से मशवरे किए जाते थे। ये डॉक्टर बेलिस थे जिन्होंने सी वर्ल्ड के लिए एक ऐसा साइंसी हथियार तैयार किया था जिसे लेजर गन कहा जाता है। ये लेजर गन एक सैटेलाइट पर नस्त है जिसे किसी बड़ी दूरबीन जैसे बनाया गया है। बजाहिर दूरबीन दिखाई देने वाला ये हथियार इंतहाई तबाहकुन है। इस गन से शमसी तवानाई और खास तौर पर रोशनी मुनक्किस करके लेजर की शक्ल में दुनिया के किसी भी हिस्से पर फायर किया जा सकता है, और ये लेजर दायरे की शक्ल जिस मुल्क पर और जिस भी हिस्से में पड़ती है इसे एक लम्हे में जलाकर भस्म कर देती है। इसकी मिसाल इस अच्छे जैसी है जैसे अगर धूप में मखसूस पॉइंट पर रखा जाए तो इससे रोशनी की बारीक सी लकीर मुनक्किस होती है, और इसके सिरे पर आने वाली चीज एक लम्हे में आग पकड़ लेती है। लेजर गन जो कि महदूद सर्कल बनाती है और इससे किसी बड़े शहर या इलाके को जलाकर राख नहीं बनाया जा सकता, इसलिए फोर किंग्स इस हथियार से पूरी दुनिया पर अपनी दहशत नहीं बिठा सकते थे। इन्हें एक ऐसी गन चाहिए थी जिसका सर्कल वसी हो और जिससे किसी मुल्क के बड़े शहर पर सर्कल लेंथ में फायर किया जा सके और वो शहर चंद लम्हों में जलकर राख हो जाए। सीवर्ल्ड के साइंसदानों खास तौर पर माहिर फलकियात और डॉक्टर बेलिस की तहकीक के मुताबिक इस गन में अच्छों की जगह अगर ब्लैक डायमंड फिक्स कर दिए जाए तो इनकी मदद से रोशनी की ताकत को न सिर्फ 1000 गुना बढ़ाया जा सकता है बल्कि इससे जमीन के किसी भी हिस्से को टारगेट करके एक बड़ा सर्कल भी बनाया जा सकता है और इस सर्कल में आने वाली हर चीज लम्हों में जलकर भस्म हो सकती है। चुनाचा फोर किंग ने फौरी तौर पर ब्लैक डायमंड की तलाश शुरू करा दी। किताब डायमंड मिशन जिल नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। बकिया हिस्सा पार्ट 2 में समाप्त फरमाए।